नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा और जिस तरीके से 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य चलने वाला है, वर्तमान में कई राज्यों में वैक्सीनेशन का कार्य आने वाले दिनों में चलने वाला है। आज हमारे साथ यूथ ऑफ सोसाइट के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जी सोमको जुड़े हुए। योगेश जी, मोबाइल वाले स्वागत सर आपका।
धन्यवाद धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद
सर। वर्तमान में कई राज्यों में 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य चलने वाला है, तो कई लोगों की मांग है कि जो अधिक संख्या में युवा है देश में, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ हो सकती है, इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाया जाए। सर किस तरीके देख रहे?
योगेश जी, बात तो बिल्कुल सही है। 120 करोड़ की जनसंख्या है पूरे देश में, और उसमें अधिकतर अगर युवा देखे जाए तो 50% से अधिक, लगभग 70-75% हमारे युवा इस देश में रहते हैं, और अभी तो केवल मेरे ख्याल से 10% भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। और जब 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की ये जो कार्य शुरू होगा, उस समय हमारे जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसको वाकई में बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ाते नहीं है तो कम वैक्सीनेशन सेंटर पे अधिक संख्या में भीड़ लगेगी और युवाओं में अव्यवस्था का परिणाम देखने को मिल सकता है। और सौसर क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बढ़ाने चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक अलग से योजना बनानी चाहिए। हमारे पास बहुत से प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्था है, हमारे पास सरकारी स्कूल है, और सरकारी बहुत सारे भवन है जो खाली पड़े रहते हैं, उसमें हम वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था बना सकते हैं। और सरकार से हमारी ये अनुरोध भी है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि 18 प्लस के जो भी युवा वर्ग है वो आसानी से इस वैक्सीन को ले सके और बिना किसी डर के, झिझक के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें ये सारी योजना को पूर्ण करना चाहिए।
जी सर, वर्तमान में जो 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन होने वाला है, इसके लिए सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए?
सर्वप्रथम तो प्रशासन, शासन अपने स्तर पर तो भरसक प्रयास कर रहा है, जनता भी और जो युवा है उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक बात है वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के की, तो इसमें दो नियम लागू कर देना चाहिए कि बिना मास्क के और जो सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं रहेंगे उन्हें वैक्सीनेशन करना, मतलब करेंगे नहीं। अब सारे युवा जान चुके हैं कि वैक्सीनेशन का महत्व क्या है, आने वाली तीसरी लहर के लिए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और काफी इसके अच्छे परिणाम आए हैं। भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, बायोलॉजिस्ट ने इनके सारे परिणामों को टीवी पर, मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से परिभाषित भी किया है कि इसके परिणाम कितने अच्छे हैं। तो युवा वर्ग है जो अभी तो जागृत हो चुका है वैक्सीन को लेके, नकारात्मक किसी के मन में कोई संशय नहीं है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक युवा ये लेना, वैक्सीन लेना चाहता है। तो उस वैक्सीन को लेने के लिए दो नियम लागू कर देने चाहिए प्रशासन ने अपने स्तर पर, कि बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग पे जो युवा आएगा उसे वैक्सीन नहीं कराया जाएगा। और प्रशासन ने इसके लिए हो सके तो एक स्पेशल मोबाइल वैन जो है वो बनाना चाहिए, ताकि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस वैन, मोबाइल वैन जाकर उसका निरीक्षण कर सके और मतलब जो भी अव्यवस्था है वो ना हो, इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर सकता है।
जी सर। सर, कई ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन को लेकर संशय है, साथ ही ग्रामीण अंचलों में कई युवा ऐसे हैं उनके पास में वैक्सीन के पंजीयन की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों को यह समस्या भी आ रही है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन उपलब्ध हो सके?
देखिए, सर्वप्रथम तो ग्रामीण अंचलों में जो युवा वर्ग है और जितने भी पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी ये एक सरल माध्यम उपलब्ध हो जाना चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत, हर जगह पंचायत होती है ना, पंचायतों में पंचायतों के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो सरपंच, उप सचिव जो है, उप सरपंच है, ठीक है, इनके माध्यम से, आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनके माध्यम से इनको तो पोर्टल की सारी लगभग जानकारियां होती है और इनके माध्यम से सारे इसमें मतलब पोर्टल में जानकारी देना चाहिए और इनको उसका मेंटर बनाना चाहिए कि आप प्रमोट करो और मेंटर के रूप में काम करो, ताकि गांव अंचलों में आप लोग आसानी से इस पोर्टल को की जानकारी दे सके। सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी कार्यकर्ता सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से उन्हें इस बात के को अवेयर करने के लिए कैसे पोर्टल में हमारा पंजीयन करें, इसके लिए प्रशासन ने यह नेक कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को पोर्टल के बारे में जानकारी हो, कहीं कहीं अगर पोर्टल अवेलेबल नहीं होता है तो हमारे जो MP ऑनलाइन के जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं जो कि सरकारी विभाग से नहीं होते, उन्हें भी इस काम में लगा देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में वो लोग इस के लिए सेवा दे सकते हैं। उससे उसके बाद भी यदि मान के चलिए गांव का जो सचिव जो है, उस क्षेत्र का जो उस पंचायत का जो सचिव है, उसने सभी गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड पर लेकर उस पे हर एक का नाम चढ़ा के आप ही उसको पोर्टल में चढ़ाने का काम करें, ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर उसमें रहता है। तो ये कदम प्रशासन ने उठाना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम है, पर हो सकता है कि इन कदमों से हमारे देश में अधिक से अधिक 18 प्लस वर्ग के युवाओं को ये वैक्सीन लग सकता है।
जी, साथ ही जो ग्रामीण अंचलों में जो भ्रामक जानकारियां फैली है वैक्सीनेशन को लेकर, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनकी भ्रामक जानकारियां दूर हो और वे भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन ले।
हाँ, ये बात तो सही है कि भारत में ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रामक और भ्रांतियां फैली हुई है कि इसके यह वैक्सीन लेने से व्यक्ति नपुंसक होता है और इस वैक्सीन को लेने के बाद हो सकता है व्यक्ति को कोरोना हो जाए, ठीक है, पर उसका प्रॉपर जो गाइडलाइन है, जो प्रॉपर सीक्वेंस ली, जो वैक्सीनेशन का जो डे बाय डे जो उसका इम्यून कम होता है और उसके बाद अप होता है, फिर उसके बाद दूसरा वैक्सीन लगता है, दूसरा डोज जब दिया जाता है 14 दिन के बाद, फिर धीरे धीरे 14 दिन तक के वो इम्यून कम होते जाता है और उसके बाद अप होता है। तो ये सारा सिस्टम हमें कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमें उनको समझाना पड़ेगा। जैसे गांव में डिंडी चलती है, डिंडी वाला व्यक्ति हर चीज की जानकारी देता है, वैसे ही गांव और ग्रामीण अंचलों में किसी समझदार व्यक्ति को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, या फिर बाहर से किसी व्यक्ति को बुला के उस गांव में जानकारी देना चाहिए या छोटे छोटे पोस्टर लगाने चाहिए। हालांकि समय कम है, तो हम अपने मतलब माध्यम से ही, वॉइस के माध्यम से ही, बोल के ही जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन बहुत ही कारगर सिद्ध है आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो माध्यम है सरकार ने अपनाने चाहिए कि यह जो ग्रामीणों की भ्रांति है वो दूर हो सके।
जी सर, सर वर्तमान में मोबाइल वाणी पर आपने आयुष्मान भारत को लेकर निजी अस्पतालों में इसका उपयोग हो, सर बीते कुछ दिनों पहले ही सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी है और साथ ही इसके लिए एक परिवार में अगर एक सदस्य का भी बना हो तो पूरे परिवार को लाभ मिले, सर कैसे देख रहे हैं इस कदम को?
सबसे पहले तो मैं मोबाइल वालों का और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह बात प्रधानमंत्री जी ने जो लागू की थी यह तो बहुत अच्छी थी, पर इसको क्रियान्वयन में लाना और अभी की परिस्थिति में यह बहुत बड़ा टास्क था। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और मोबाइल वाणी के माध्यम से जब आवाज उठाई गई, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर जब यह न्यूज चली कि आयुष्मान कार्ड को का जो लाभ है कोविड के इस विपरीत परिस्थिति में सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही इसके बारे में जानकारी दी कि कोरोना की इस विपरीत परिस्थिति में जो भी पेशेंट है निजी अस्पताल में यदि वो अपना इलाज करवाता है तो उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत और आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनका सारा खर्चा वहन किया जाएगा। तो यह बात तो सामाजिक कार्यकर्ताओं, मतलब उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि इस बात को भारत सरकार के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया और यह बहुत ही हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश का अधिकतर वर्ग जो है वह गरीब तबके से है, निम्न वर्ग से है और उसके बाद मध्यम वर्ग से है। अमीर वर्ग जो है जो वहन कर सकता है उनकी संख्या बहुत कम है, तो गरीब वर्ग के लिए यह तो मान के चलिए कि एक संजीवनी बूटी का काम करेगा आयुष्मान कार्ड, और बहुत मतलब वो हिचकिचाएंगे नहीं कि किस अस्पताल में जाए किस नहीं, आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है उन्हें हर अस्पताल में मिलेगा। तो गरीब वर्ग के लिए यह आयुष्मान जो कार्ड है वो एक संजीवनी बूटी का काम करेगा और एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, उनको एक साहस और हिम्मत मिलेंगे कि कुछ यदि हो गया तो हमारे पास पैसे नहीं है तब भी हम किसी निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत यह कार्य कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं।
जी सर, वर्तमान में 2 से 2.5 माह से अपने जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना संक्रमण को लेकर, लेकिन सर कुछ राशन वितरण में कुछ गलत खामियां गड़बड़ियां सामने आ रही है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं ताकि गरीब वर्ग के लोगों को राशन उपलब्ध हो सके?
देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 महीने का राशन जो है, 3 महीने का राशन जो है वो मुफ्त में देने की जो घोषणा की है, उसके बाद से तो राशन की दुकानों में जैसे ताता लग चुका है जब से यह घोषणा हुई है। और दूसरी बात, जो गड़बड़ियां है राशन की दुकान में, गड़बड़ियों का होना यह हमारे लिए एक नकारात्मक खबर है, और इसके लिए हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका नियंत्रण इस पर होना चाहिए। जब तक प्रशासनिक अधिकारी का नियंत्रण इन पर नहीं होगा, किसी पर, किसी एक व्यक्ति पर राशन के दुकान जो आवंटन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो लोग पूरे सीधे नहीं आएंगे। जब किसी एक पर कार्रवाई होगी तो बाकी सब लोग अपने आप सीधे आ जाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो गड़बड़ियां हो रही है वो अत्यंत मतलब आलोचक है, और इसकी आलोचना होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उनसे अनुरोध भी है कि इस ऐसे कोरोना की विपरीत परिस्थिति में जो भी इस आपाधापी को और इस कोरोना मतलब जो सरकारी योजना चलती है उसमें गड़बड़ी ना करे, और गड़बड़ी करते हैं और पाए गए तो उन पर सजा हो, उन पर कार्रवाई हो।
जी सर, सर वर्तमान में मोबाइल वाने पर जिले में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो या जिले के ब्लॉकों में कोविड सेंटर की मांग हो, अभी वर्तमान में किस तरीके से देख रहे सर इसको?
देखिए, मोबाइल वाने के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें पूरी हुई है। सबसे सर्वप्रथम तो 80 बेड का जो सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर घोषित होना चाहिए, मोबाइल वाने के माध्यम से सर्वप्रथम यह आवाज उठाई गई, और मोबाइल वाने के माध्यम से ही यह आवाज ऊपर तक की गई, और सौसर तहसील में जो है वो सरकारी अस्पताल जो है 80 बेड का कोविड सेंटर घोषित किया गया। उसके बाद ऑक्सीजन की जो पूर्ति थी वह नहीं हो रही थी, उसके लिए आवाज उठाई गई, तो आज इतनी ऑक्सीजन है कि हर एक पेशेंट, 80 अगर बेड है, 80 बेड में यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। ठीक है, वहाँ हर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो सकती है। और वर्तमान में जो भी परिस्थितियां है जो निर्माण हुई है, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए काम किया उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो भी उपलब्धियां हुई है, कहीं ना कहीं मोबाइल मनी का इसमें बहुत अधिक भरसक प्रयास है और योगदान है।
जी सर, सर वर्तमान में आपके क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से क्या स्थिति है अभी वर्तमान में?
अभी जो स्थिति 15 दिन पहले थी वह आज तो नहीं है। आज हमारे अपने क्षेत्र में, सौसर क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में यह जो कोरोना की परिस्थिति है या पेशेंट जो है उसमें कमी आई है, और थोड़ा थोड़ा लोगों में हिम्मत भी आ चुकी है, और पेशेंट कमी आने की वजह से सकारात्मकता का माहौल जो है वो अधिक हो चुका है। लेकिन उत्तर भारत में यह पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, पर हमें अभी भी सतर्कता और सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना होगा, बार बार हाथ धोना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। कारण ये भी है कि कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, कि जब कोई 100 साल में एक महामारी आती है तो उसके 2.5 चरण होते हैं। तो यह दूसरा चरण हमने तो देख लिया, प्रथम चरण 2020 में देखा, द्वितीय चरण 2021 में देखा, और जो 2.5 वाला जो चरण बोलते हैं, 2.5 साल आखिरी जो चरण होता है, जो तीसरा चरण होता है, शायद वो ना आए ऐसी प्रभु से मनोकामना है, पर यदि वो आता है तो हमें इसके लिए अभी से तैयार रहना होगा। अभी वर्तमान की परिस्थिति में छिंदवाड़ा जिले में कोरोना नियंत्रित लगभग हो चुका है, पर पूर्णता नहीं हुआ है।
सर वैक्सीनेशन को लेकर क्या जागरूकता अभियान चला रही है?
यूथ ऑफ सौसर तो युवाओं को लेकर सबसे प्रथम युवाओं का ही यह ग्रुप है, और यूथ ऑफ सौसर एसोसिएशन जो है वह इस वैक्सीनेशन को लेकर अपना अभियान जरूर चलाएगा, अवेयर करेगा, लोगों तक जाएगा, युवाओं तक जाएगा, कि हर युवा ग्रामीण अंचलों से अंचलों तक, हर क्षेत्र के कोने से कोने तक के युवा जो है वह वैक्सीनेशन कराएगा। और यह अभियान हम फेसबुक मीडिया माध्यम से, व्हाट्सएप मीडिया माध्यम से, ट्विटर माध्यम से, और अन्य जो जन जागृति अभियान के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से हम चलाएंगे।
तो ये थे यूथ ऑफ सौसर के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जी सोमकुंवर, जिन्होंने वर्तमान परिस्थिति कोरोना संक्रमण को लेकर, साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड को निजी अस्पतालों में यूज होने के साथ साथ जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड व ब्लॉकों में कोविड सेंटर के लिए अभी जो सेंटर बनाए गए हैं उससे संतुष्ट हैं। साथ ही इन्होंने बीते दिनों मोबाइल वाणी पर अपने मुद्दे रखे थे और वर्तमान में उसकी शायद प्रशासन ने सुनी और अभी इसको जमीनी हकीकत तक देखा जा रहा है। योगेश जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद सर।
इन बड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश।